भगवान गुण अनंत मय राजते वंदों से महान साधु संग से मोरे संघ नायक आचार्य गुण चतीत सुशोभते साधे निज पर द्वादशांग से शोभता हे जिनका श्रुत ज्ञान पढ़े पढ़ावे अन्य को सार्थक चरण प्रणाम रत्नात्रयमय साधना से शिव सुख है साध्य अठाईस गुण धारते साधु परम आराम अनेकांत प्रतिपादिनी दिव्य ध्वनि ओंकार त्यागवाज वाणी करे संशय तिमिर निवार तिरुवन को सुखकार है अंतर्मुख मुद्रा हो परम शांति सुख के निज स्वरूप दर्शावते नमो नमो जिन समव शरण सम शोभता जिन मंदिर सुख का जिन दर्शन से प्राप्त हो निज दर्शन भवतार निज दर्शन भवतार पुष्पांजलि ये जो विनय पाठ था उस विनय पाठ में विनय की गई लेकिन किसकी किसकी विनय की गई बताइए बोलो पढ़ा है ना सबने अभी क्या पढ़ा शुद्धात्मा की ये तो आप रटा रटाया जवाब दे रहे हैं पंच परमेश की नहीं इसमें जो विनय की है वो नौ देवताओं की विनय की है आप जानते हैं नौ देवता कौन है क्या है मोहित भाई हमें नौ देवताओं की विनय की है इसमें हमें नौ देवताओं के नाम मालूम नहीं क्या नौ देवता कौन कौन से हैं देखो इसमें इसमें देखेंगे तो पता लगेगा आपको सबसे पहले तो अरहंत भगवान की बात कही फर्स्ट नंबर पर अरहंत कैसे हैं अरहंतों का स्वरूप बताया नीचे नहीं इधर देखो इधर इधर से बताओ यहाँ क्या है सबसे पहले अरहंत भगवान लोकालोक को निहारने वाले सिद्ध भगवान अशरीरी दूसरे चंद में सिद्ध भगवान की बात कही फिर तीसरे चंद में साधु कौन आचार्य संघ नायक कहा ना संघ के नायक आचार्यों की बात कही फिर चौथे चंद में द्वादश अंग के पाठी पढ़े पढ़ावे उपाध्याय की बात कही फिर रत्नत्रय के धारी अट्ठाईस मूल गुणों के धारक ये साधु परमेश की बात कही फिर इसके बाद में अनेकांतमयी वाणी ये जिनवाणी जिनवाणी की बात कही फिर उसके बाद में बीस रागमय धर्म ये धर्म की बात कही सात हो गए फिर आठवें में बात कही जिनबिंब जिनबिंब और फिर नीचे कहा जिन मंदिर नौवे में ये नौ देवता हैं हमारे यहाँ जैन परंपरा में नौ देवता ही पूज्य हैं दसवें नहीं सिर्फ नौ देवता ही पूज्य हैं पंच परमेश्वरी जिनवाणी जिन धर्म, जिन मंदिर और जिन प्रतिमा, इन नौ देवताओं की पूजन हमारे माध्यम से की जानी चाहिए। सबके प्रति विनय का भाव रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं पूजा की दिशा की ओर। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरहंताणं नमोते दानं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोहे समकाणं। ओम ह्रीम आदि मूल मंत्र को हमें पुष्पांजलि निश्चिते मंगलम अरिहंता मंगलम सेसा मंगलम काहू मंगलम केवलीपण तो ब्रह्मो मंगलम चारी लोगुतेमा अरिहंता लोगुतेमा सेसा लोगुतेमा काहू लोगुतेमा केवलीपण तो नमो लोगुतेमो चतारी कर्णम पवजामि केवले पर्णातम ब्रह्म शरणम पवजामि। ॐ मूर्ते स्वाहा पुष्पाञ्जलिमीशिते। चार ही जगत में मंगल है, चार ही उत्तम है और चार ही शरण है। बोलो कोई समस्या हो तो किसकी शरण में जाना, शरीर संबंधी कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो डॉक्टर की शरण में जाओ, कोई कानूनी समस्या हो तो वकील की शरण में जाओ। यहाँ क्या कह रहे हैं, या तो अरहंत भगवान की शरण में, या सिद्ध भगवान की शरण में, या साधु की शरण में, गुरु की शरण में, मुनिराज की शरण में। अरिहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म, बस ये चार ही चरण है। न माता पिता चरण है और न जगत के कोई और पदाधिकारी चरण है, एकमात्र यही चरण है। इनको भी व्यवहार से चरण कहा है, निश्चय से चरण तो अपना आत्मा ही है। इनको चरण क्यों कहा है दिलीप भाई, इसलिए कहा है कि आत्मा की चरण में भेज देते, ये सही रास्ता दिखाते हैं, इसलिए इनको शरण कहा है। चलिए मंगल विधान बोलते हैं आगे। अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा जाये पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। पराजित मंत्रोयम् सर्वदेहविनाशन मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतये। नित्यक्षरं ब्रह्मवाचिकं परमेशिने सिद्धचक्रस्य सर्वीयं सर्वदः प्रणमाम्यहम्। देवनो वा प्रणमयान्ति शाकिनी भूतपन्नगा दिशं निर्देशितं याति श्रवण मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाद मम यजे। ओम श्री शिव प्रजनाम देव सर्वं निर्वपानी श्रीमानेन्द्र मिवान्य जगत्रयेशम् श्रीमूल संग सुदृशाम सुकृतैके सुतिलोकुवाय सहयोजित ब्रह्मयाय स्वच्चल विमल बोध सुधा प्रवाय स्वते त्रिलोक वितैक चिदुद्गमाय ज्योतिमिगाम्य यथानुरूपम् आलम्बनानि विविधान्य वलम्य वल्लभम् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि तस्मे ज्वल विमल केवल बोधवन्नो
दो चीजें अपन ने यहाँ ये संस्कृत में बोली है। ये जो पाठ हमने बोला है इसका नाम क्या है मोहित भाई? पूजा प्रतिज्ञा पाठ। इसका मतलब पूजन करने के पहले हम कोई प्रतिज्ञा ले रहे हैं। प्रतिज्ञा ले रहे हैं हम भी। आपने कभी पूजा ही नहीं हो, अभी मैंने मंत्र नहीं पढ़ा। आपको प्रतिज्ञा नहीं लेनी हो तो सोच लेना। प्रतिज्ञा लेकर के बैठ रहे हैं यहाँ पर। क्या प्रतिज्ञा दिला रहे हैं? संस्कृत में था तो समझ में नहीं आया, संस्कृत में लिख दिया। हिंदी में लिखते तो हमें पता होता हम क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं। पता नहीं क्या क्या प्रतिज्ञाएं दिला दी इन्होंने यहाँ। कौन सी प्रतिज्ञाएं दिलाई है कि देखो आपको दिखाता हूँ मैं, चार नंबर छंद 10 नंबर पेज पर पहली लाइन देखो क्या लिखा है। द्रव्य से शुद्धि, ओहो द्रव्य से शुद्धि मधिगम्य और यथानुरूपम भाव से शुद्धि। क्या क्या कहा? हे जिनेन्द्र देव, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं आपके सामने जो ये द्रव्य लेकर के आया हूँ ये शुद्ध द्रव्य है, धुले हुए हैं। ये प्रतिज्ञा है द्रव्य से शुद्धि। और फिर कहा यथानुरूपम भाव से शुद्धि। ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठ रहा हूँ कि आपकी पूजन के काल में मेरे भाव भी शुद्ध रहेंगे। आप ध्यान रखें प्रतिज्ञा लेकर के बैठे, ऐसा न हो कि पूजन करते करते बीच में भोजन याद आ जाए। भजन के बीच में भोजन याद आ गया तो भाव शुद्धि नहीं रही। भाव शुद्धि माने भगवान और मैं, पूजन और मैं, इन दो के बीच में और कोई नहीं आएगा, इसका नाम है भावों की शुद्धि। हे भगवान, मेरा मन अब इधर उधर नहीं दौड़ेगा, मेरा मन अब कहीं और नहीं जाएगा, मेरा मन घर गृहस्थी के कामों की तरफ नहीं जाएगा, मेरा मन कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन क्या कर रहा है वो आए नहीं, उनको फोन कर लो, इनको बुला लो, वो आ जाते तो अच्छा रहता, इधर उधर मन नहीं दौड़ेगा। ये प्रतिज्ञा ली जा रही है। हमेशा पढ़ते हैं पूजन करते समय मोहित भाई, तो ये दो लाइनें ध्यान रखना, द्रव्य से शुद्धि और नीचे का है भाव से शुद्धि। और पाठ का नाम है प्रतिज्ञा पाठ, प्रतिज्ञा लेनी। अंतिम लाइन देखो इसी की, पुण्यम समग्र महनेक मना जुहोमी। हे भगवान, आपकी पूजन करके मैं कुछ नहीं चाहता हूँ,
बहुत से लोग पूजन विधान करते हैं ना, इसलिए करते हैं कि घर में शांति हो, इसलिए करते हैं परिवार में शांति हो, इसलिए करते हैं कि जॉब में इंक्रीमेंट मिल जाए, इसलिए करते हैं कि बिजनेस बढ़े। ये लोगों की टेंडेंसी है इस तरह की, हम इसलिए करते हैं। लेकिन भाई सुनो, इस भावना के रखने से तो पाप बंधता है, ऐसी भावना से रखने से, और निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजन करने से पुण्य बंधता है, पुण्यम पुण्य बंधता है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान का भक्त ये कह रहा है कि भगवान आपके सामने पुण्य बांधने के लिए भी नहीं आया है। पुण्यम क्या लिखा है, पुण्यम समग्रम, माने समग्र माने कंप्लीट, समग्रम कंप्लीट पुण्य, अहम एक मना जू होमी। ओहो हे भगवान, आपकी भक्ति और पूजन से बंधने वाला जो पुण्य है, देवी मैं आपकी भक्ति में ही स्वाहा करता हूँ, मुझे तो पुण्य भी नहीं चाहिए, ऐसी भावना व्यक्त की है। एक पाठ इसके पहले पढ़ा था, मंगल विधान। लोग पूछते हैं नमोकार मंत्र कब पढ़ना चाहिए, बताओ। मुकुल भाई आगे आ जाओ, ये फ्रेंड सीट आपकी है, नहीं बुला लेंगे आपको। तो लोग ये कहते हैं नमोकार मंत्र कब पढ़ना चाहिए, अशुद्ध है तो पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ सकते हैं अशुद्धि के काल में भी, आप पवित्र हो तो हॉस्पिटलाइज हो तो बिना नहाए धोए हो तो चलेगा, आप सब कह रहे हो चलेगा, मैं भी चला दूं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं यहाँ, नमोकार मंत्र का स्मरण किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, अपवित्र अवस्था में। अच्छा झूठे मुंह हो तो नमोकार मंत्र बोले के नहीं बोले, मन में बोल सकते, भोजन कर रहे हो तो नमोकार मंत्र बोले के नहीं, भोजन करते समय कैसे बोलेंगे, लेकिन मन में चल सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, फिर में लिखा अपवित्र हो या पवित्र हो, बैठे हुए हो चाहे लेटे हुए हो, अपवित्र अवस्था में लेटे उत्पटांग शौचालय में हो, नहा रहे हो, ऐसी स्थिति में मुंह से तो नहीं बोले, लेकिन ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते, इस पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान हमेशा रहे तो आप पापों से मुक्त होते रहेंगे। सदा काल पंच परमेश्वर का स्मरण रहे, आदिनाथ भगवान विराजमान है, महावीर भगवान विराजमान है, चौबीसों तीर्थंकर विराजमान है यहाँ, चौबीसों तीर्थंकरों के प्रति भक्ति का भाव मेरे मन में सदा काल रहे, इस भावना से हम आगे स्वस्ति मंगल पाठ जिसमें चौबीसों तीर्थंकरों को याद कर रहे हैं। हाँ पहले मंत्र ओम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, देख लेना आप द्रव्य भाव शुद्धि की। ओम यज्ञ विधि प्रतिज्ञा जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत श्री वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री पुष्प पूजन तो इसके बाद शुरू होगी। ये प्रथम यहाँ आचार्य की पूजन है, बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा है, श्रुत पंचमी का ये महान प्रसंग है, श्रुत पंचमी को ज्ञान पंचमी भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान की आराधना का ये पर्व है। ज्ञान की आराधना, ज्ञान का स्वरूप क्या है और यह ज्ञान जितना वर्तमान में उपलब्ध है हमारे पास में, उसमें यदि किसी को कुछ विकल्प आया इसको उपलब्ध कराने के लिए, तो ये आचार्य थे धर्मसेन आचार्य। तरीके है आपको कुछ? वही कोई है कुछ तरीके? धर्मसेन आचार्य जिस नमोकार मंत्र की महिमा अभी हमने गाई थी, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक प्रणासनो, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलानम च सव्ये सिम परमम हरि मंगलम, ये सब मंगलों में पहला मंगल है। ये नमोकार महामंत्र किसने लिखा ये बताओ, इस नमोकार मंत्र के लेखन का इतिहास क्या है, ये नमोकार मंत्र की कहानी कब से शुरू हुई, ये नमो अरिहंतानंद ये वर्ड किसके लिखे हुए हैं, मालूम है कहाँ से आए? ये जिन्होंने लिखे हैं ये उनकी पूजन कर रहे हैं। अहंकार मंत्र जिसने लिखा है ना महेंद्र भाई, ये उसकी पूजन की जा रही है। अहंकार मंत्र तो अनादि अनंत है, भाव की अपेक्षा से पांचों परमेश्वरों को नमस्कार करने वाला ये मंत्र अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा भाव की अपेक्षा से। लेकिन ये जो शब्द है, ये शब्द कहीं तो सबसे पहले लिखे गए होंगे, किस जगह पर लिखे हैं और किसने लिखे उसकी कथा अभी हम आपको बीच बीच में सुनाएंगे। ये कथा शुरू होती है धर्मसेन नाम के आचार्य से, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले। कुंद आचार्य के भी पहले हुए धर्मसेन आचार्य। ये धर्मसेन वे आचार्य थे जिनको द्वादशांग श्रुति में से बहुत कम ज्ञान रह गया था। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि श्री दिव्य उपदेश हुआ, समव शरण की रचना, उनके उपदेश को गौतम ने सुना, इंद्रभूति गौतम स्वामी ने, गौतम स्वामी ने सुनकर उसे आगे बढ़ाया, सुधर्म स्वामी तक पहुंचा, फिर जम्बू स्वामी तक आ गया, फिर जम्बू स्वामी के बाद में फिर वो और आगे बढ़ता चला गया परम्परा से। बट वर्वनी मौखिक चल रहा था। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी लाइफ में एक शब्द भी लिखा नहीं, हम क्या पढ़े, वो मौखिक परंपरा चलती रही। कितने वर्ष तक? 683 683 वर्ष तक ये मौखिक परंपरा चलती रही। बट अवतरपणी काल चल रहा है, डे बाय डे ज्ञान कम होता गया, जो वो मेमोराइज करते थे ना वो कम कम होता जाता था। जितना मैंने मेमोराइज किया उतना मैं बताऊंगा तो कम ही बता पाऊंगा, और जितना बताऊंगा उतना 100% सामने वाला लेगा नहीं, और कम हो गया। फिर उसको जितना मिला है वो आगे ट्रांसफर करेगा तो और कम हो गया। डे बाई डे कम होता होता जब धर्मसेन आचार्य के पास में आया, भगवान महावीर स्वामी के 683 वर्ष बाद उनको विकल्प आया, ओहो यार ये इतना कम होता जा रहा है, ये धीरे धीरे जैन धर्म खत्म हो जाएगा, अपने को कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिसके माध्यम से इनको लिखा जा सके, इनको रिटर्न में आना चाहिए। रिटर्न यदि ये तैयार हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर शाश्वत हो जाएगा। इन लिखने का विचार उनको आया धर्मसेन नाम से आचार्य, और जब उनको ये विचार विकल्प आया, देखो इनको तो विकल्प आया लिखने का, और आप लोगों को विकल्प आ रहा होगा कि इतना बीच में समझाएंगे तो पूरा कब करेंगे। हाँ आ सकता है विकल्प, अरे वो 12 बजे तक पूरा ही करना है, 12:30 तक, वो आधा घंटा बढ़ा दिया आपने तो। आप चिंता नहीं करें, मैं कितना भी रोकूं कितना भी समझाऊं गाड़ी टाइम से पहुंचेगी, आप चिंता नहीं करें। इसलिए आपका आनंद ले, बस विषय क्या है एक बात समझ लेना, समझे बिना काम नहीं चलेगा। आप कर क्या रहे हो, भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, और मैं पूजन क्यों कर रहा हूँ और किसकी कर रहा हूँ कुछ पता नहीं है, पर आपको जो हमने पूजन कर ली, जय जय नाथ, आज के आनंद की जय जय। अरे भाई साहब ये धरते ना चाहिए, इनका ये विकल्प, इनको ऐसा विकल्प आया कि काम होना चाहिए, रिटर्न में लिखा जाना चाहिए, नाम ध्यान रखना, पूछूंगा भोजन करने के पहले तो क्या नाम था, आचार्य धरते। इनको विकल्प आया, इनकी एज तो बहुत थी, तो इन्होंने सोचा यार ये काम मेरे से तो हो नहीं सकता है, सिर्फ दो मुनिराज ऐसे चाहिए जो विशेष बुद्धिमान हो, विशेष सामर्थ्य वाले हो, उनको हम बुलाएं तो काम होगा, ऐसा इन्होंने पूछा। तो इन्होंने ये महिमा नगरी में थे और पास में कहीं मुनिराजों का सम्मेलन हो रहा था। सुनिए कहानी, कितनों ने सुनी है, आप खड़ा करें, नाम तो याद ही नहीं था, कोई बात नहीं। मुनिराजों के सम्मेलन से उन्होंने दो मुनिराजों को बुलाया। रात को इनको स्वप्न आया, एक उस स्वप्न में दो बैल दिखाई दिए, बहुत अच्छे कटे, वो बैल दिखे। सुबह उठे, जैसे ही आंख खुली तो आंख खुलते ही दो मुनिराजों को सामने खड़ा हुआ पाया, दो मुनिराजों को। वो दोनों मुनिराज कौन थे, एक का नाम था नरवाहन, एक का नाम था सुबुद्धि। दोनों मुनिराजों को देखकर उनको सोचा कि यार मैं इनको दे दूंगा ज्ञान दू और ये कुछ भी लिख देंगे, क्या पता बुद्धि कितनी है, मैं समझाऊं कुछ, समझे और कुछ और लिख दे और कुछ, तो ये तो लाइफ टाइम के लिए फिर परंपरा बिगड़ जाएगी, तो क्या करें, इनकी परीक्षा ली जानी चाहिए। उन्होंने दोनों मुनिराजों को एक एक मंत्र दिया और मंत्र देकर के कहा जाओ तीन दिन तक इस मंत्र की साधना करो, इन मंत्र की सिद्धि करो और कोई समस्या हो तो मेरे पास दौड़े मत चले आना, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा समाधान करेगा। दोनों ने जाकर के मंत्र की साधना की, दोनों मुनिराजों ने जाकर के सिद्धि की, मंत्र की। फिर क्या हुआ, एक मुनिराज के पास में मंत्र की सिद्धि करने से जो देवियां प्रकट हुई, जो देव प्रकट हुए, वे ऐसे प्रकट हुए हैं मंत्र की साधना की थी, जिनके माध्यम से वो देवी के एक दांत ऊपर निकला हुआ था आगे। मुनिराज ने सोचा ये क्या चक्कर है, देव लोग तो बहुत सुंदर होते हैं, इससे तो एक दांत ज्यादा निकला हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मंत्र को गहराई से देखा, एक अक्षर ज्यादा था मंत्र में, उस अक्षर को निकाल दिया, मंत्र शुद्ध हो गया, वापस साधना की गई और देवियां अच्छे रूप में प्रकट हुई। फिर उन देव देवियों ने इन मुनिराजों की दांतों की पंक्तियां कुछ ऊपर नीचे थी, इनको व्यवस्थित सुंदर कर दिया, पुष्प के समान सुंदर दांत बना दिए, इनका नाम पड़ गया पुष्प दंत। पहला एक नाम क्या था, धरसेन, धरसेन आचार्य जिनको विकल्प आया था। दूसरा नाम क्या है, पुष्प दंत जिनको ये देवी प्रकट हुई। तीसरा नाम, अब वो जो और तीसरे मुनिराज थे उन्होंने साधना की तो एक देवी प्रकट हुई जिसके एक आंख नहीं थी, कानी, देव लोग सुंदर होते ही कानी देवी कैसे प्रकट हुई, विचार आया और इस विचार पूर्वक क्या किया, उन्होंने वापस मंत्र को देखा तो एक अक्षर कम था मंत्र में, उस एक अक्षर को जोड़ दिया, उनको एक अक्षर ज्यादा था, इनको एक अक्षर कम था। फिर वो देवों ने इनकी पूजन भक्ति आराधना की, यंत्रों ने इनकी पूजा करी, ये थोड़े कमजोर थे इनको थोड़ा सा हष्ट पुष्ट कर दिया देवों ने अपनी शक्ति रिद्धि से, इनका नाम पड़ गया भूत बलि। एक का नाम धरसेन को मूल आचार्य और ये दोनों मुनिराज पुष्प दंत और भूत बलि, इन दोनों को बुला करके फिर शिक्षा प्रदान की, इनको ग्रंथ लिखने के लिए कहा, ध्यान देना, इन दोनों मुनिराजों को ग्रंथ लिखने के लिए कहा। हंसलेश्वर में जाकर के इन्होंने चातुर्मास किया, वहां जाकर के इन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। पुष्प दंत आचार्य ने सबसे पहले कलम चलाई जिसमें फर्स्ट नंबर पर यदि कोई वर्ड लिखे गए तो वो था नमोकार मंत्र। पुष्प दंत आचार्य ने सबसे पहले जो कुछ शब्द लिखे ग्रंथ लिखने के पहले उस ग्रंथ का मंगलाचरण जो है वो है नमोकार मंत्र। सबसे पहला ग्रंथ था वो शतखंडागम ग्रंथ जिसे सबसे पहले लिखा गया, उसके मंगलाचरण में ये लिखा गया। और सुनो, ये ग्रंथ
जब कुछ वर्षों में जाकर पूरा हुआ ग्रंथ, तो सब मुनिराजों ने, संघ ने मिलकर उन ग्रंथों की, शास्त्रों की पूजा करी जनवाणी की। और वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन, वो श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रुत माने शास्त्र और पंचमी, जिस दिन शास्त्र लिखकर पूर्ण हुए और शास्त्रों की पूजन सर्वप्रथम की गई, वो दिन श्रुत पंचमी और ज्ञान पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये थोड़ी सी कहानी मैंने आपको यहाँ सुनाई है। ग्रंथ का नाम था शतखंडागम, मंगलाचरण के रूप में लिखा। कुछ आचार्यों की ये कथा मैंने आपको सुनाई। आप देखिए, ये पूरी चर्चा आपको जानने को मिलेगी इस पूजन में, इस स्थापना के लिए हम कभी खड़े होते हैं। बीच में नहीं बोलूंगा और अंत में फिर देखेंगे इसमें कोई और बात तो नहीं आई है। और अब आप ध्यान से पढ़ना क्या क्या बातें इसमें कही जा रही है। क्या करते हैं स्थापना, क्या स्थापना करते हैं, सोने वगैरह डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, वीर जिनेश्वर को नमो, गुरु गौतम उर लाए, श्री घर से नाचार्य को बार बार शिरनाय, शतखंडागम शास्त्र का परंपरा श्रुत ज्ञान, पुष्प दंत अरुभूत बली रचना करी महान, वीर सेन जिन सेन ने टीका रची अपार, सैनी प्रज्ञावंत जन करे नित्य अवगाह, सहन कपूर भगवान महावीर को याद किया, फिर गुरु गौतम, गौतम स्वामी का यहाँ स्मरण किया, और उसके बाद धर्मसेनाचार्य को बार बार सिर झुकाकर, जिन्होंने शतखंडागम का ज्ञान पुष्प दंत और भूत बली को दिया। पुस्तक में देखेंगे तो मैं वहीं से बोल रहा हूँ। फिर वीर सेन और जिन सेन ने इस शतखंडागम ग्रंथ की टीका करी, अपनी प्रज्ञा माने ज्ञान को कहना करके नित्य ही इसका अवगाहन जन जन करे। मैं कह नहीं सकता हूँ इस ग्रंथ की महिमा, मैं तो मंद मती हूँ भक्ति भाव से, बस मेरे हृदय में ग्रंथ और निर्ग्रंथ दोनों बस जाएं। ग्रंथ तो ये जिसकी पूजन कर रहे हैं, और निर्ग्रंथ वे जिन्होंने शास्त्र रचे, मुनिराज, मुनिराजों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति से अब मैं मुखर होकर यहाँ स्थापना कर रहा हूँ। ओम रीम श्री प्रथम श्रुत स्कंध प्रदाता रहे, श्री धर देन पुष्प दंत भूत बलि मुनिवराह, अत्र अवतर अवतर संभोषक। ओम रीम श्री प्रथम श्रुत स्कंध प्रदाता है, श्री धर देन पुष्प दंत भूत बलि मुनिवराह, अत्र तिष्ठ। ओम रीम श्री प्रथम श्रुत स्कंध प्रदाता है, श्री धर देन पुष्प दंत भूत बलि मुनिवराह, अत्र मम सन्निहितः भव अवशत इति सन्निहितकरणं त्रिपुष्पाञ्जलिर्विशत। हाँ जी, योगी रामा चंद्र कैसा बोला जाता है,
जन्म जरा मृत्यु के करने की कला हमें सिखलाई श्रीधर सेना प्रथम सुन प्रदात्रभ्य श्रीधर सेन पुष्प दंत भूत बलि मुनिवरे जन्म जरा मृत्यु जरा जना जन्म निर्वपाणी दीपा श्री धर सेन पुष्प ग्रंथ भूत बलि संसार का प्रणाम जनाए चंदन निर्वपाणी जी खेड़ाला की तीसरी ढाल है ना वो जो इसमें लगेगी स्वर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्य भला है आप रूप को जान पनो को सम्यक ज्ञान कला है निज पद में है दृष्टि अखंडित खंडित पद नहीं चाहे हे आचार्य व्रतधारी गुरुवर अक्षय पद आराधे श्रीधर सेनाचार्य मुनीश्वर रत्न त्रय के धारी पुष्प दंत अरुभूत बलि पद पंकज लोक हमारी ओम ह्रीं श्री प्रथम श्रुत स्कंध प्रदातृभ्य श्रीधर सेन पुष्प दंत भूत बलि मुनिवरेभ्य अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपावेति स्वाहा परम ब्रह्म रस भोगी गुरुवर ब्रह्मचार्य व्रतधारी हे निष्काम परम योगी गुरु तुम हो शिव मग जान श्रीधर सेनाचार्य मुनीश्वर पुष्प दंत अरुभूत बलि पद पंकज लोक ओम ह्रीं श्री प्रथम श्रुति स्कंध प्रदातृभ्य ये प्रथम श्रुति स्कंध क्या चीज है श्रुति स्कंध माने शास्त्र का केंद्र शास्त्र का समूह और प्रथम श्रुति स्कंध षट खंडागम ग्रंथ है जो धरसेन आचार्य के निर्देशन में पुष्प दंत और भूत बलि आचार्य ने लिखा कि जैन परंपरा का रिटन स्क्रिप्ट ये फर्स्ट ग्रंथ षट खंडागम ग्रंथ तो प्रथम श्रुति स्कंध प्रदाचार्य श्री धर सेन पुष्प दंत भूत बलि बने बने थे काम अर्धनाये पुष्पम निर्व पानी दीन तुस मात्र संग नहीं गुरुवर सुरपति दास तुम्हारे चिदानंद रस तृप्त गुरु मम सुधारो निर्वारे देखो तिल कुछ मात्र संग में नहीं परिग्रह तो जिनके पास में बिल्कुल नहीं है और सुरपति दास तुम्हारे रंग से मात्र परिग्रह नहीं है लेकिन स्वर्ग के देव भी तुम्हारे दास हैं हमारे मुनिराजों के दास हुआ करते हैं देव लोग भक्तावर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम मुद्योतकम दलित पाप समो विदानम क्या है भक्तावर हे जिनेन्द्र देव ऐसे स्वर्ग के इंद्र भी अपने मस्तक का मुकुट आपके चरणों में धरते आपके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं ये है मुनिराजों की महिमा ये क्या कह रहे हैं तिल तो मात्र संग नहीं तिल का कुछ अरे कण मात्र भी
एक छिलका मात्र भी जिनके पास में परिग्रह नहीं है और देव लोग जिनके धास हैं, क्या करते हैं? आनंद रस का पान करते हैं, सुधा रूपी रोग से रहित हैं। ओम ह्रीम प्रथम श्रुत कंद प्रदातृभ्य श्री धरसेन पुष्प दंत भूत बलि मुनिवरेभ्य सुधा रोग विनाशनाय विद्यम निर्वपानी मनोगुप्ति के धारी गुरु मम मन मंदिर के वासी श्रुत रवि वचन किरण से मेरे मोह तिमिर को नाशी श्री दर से नाचन प्रथम स्कंद प्रदाय श्री धर के भूलिए मोहांतकार विनाशनाय दीपम निर्वपानी दीपा वचन द्वार से दीपर में लक्ष्य तुम्हारा जाता महामौन धारी गुरु वचनों ने कर्म सुता प्रथम श्रुत स्कंद प्रदाय श्री धर से पुष्प दंत भूत बलि मुनिवरेभ्य अष्टकर्म नयनाय रूपम निर्वपानी स्वाहा चंचल चेत हुआ फिर निज में कल भी निश्चल होता गुरु चरणों में शिव पल पाने मैं निज की नवाता प्रथम श्रुत स्कंद प्रदाय श्री घर से पुष्प दंत भूत बलि मुनिवरेभ्य मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपानी स्वाहा पंच महाव्रत कीन मुक्ति घर अनमोल तुम्हारा गुरुवर सब चरणों में बसता है अनर्य पद मारा ओम ह्रीम श्री प्रथम शुद्ध स्कंद प्रदाय श्री धर से पुष्प दंत भूत बलि मुनिवरेभ्य अनर्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपानी स्वाहा कुछ अर्घ समर्पित करेंगे हम यहाँ दर्शन आचार्य के लिए ये अर्घ है ये मंडल के अर्घ समर्पित करेंगे मंडल के अर्घ समर्पित करना है ना हाँ पहले बोल लेते हैं सभी रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिन वर के दर्शन पाए गिरी गिर नार शिखर विख्यात में करते से दो से बात रहे सुरक्षित कहते ज्ञान चिंता गुरु को कृपा निधान गुरु चरणों में अर्घ्य चढ़ाए
पद अनार्य दृष्टि में लाए।
ये भक्ति बोलते हैं कभी रोम रोम पुलकित तो हो जाए?
नहीं नहीं बोली कभी आप लोगों ने?
रोज क्या मैं ही बुलवाता हूँ आपको, रिपीट करना,
रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए।
आगे लिखी लाइन इसमें,
रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए।
अब सुनना,
जिन मंदिर में श्री जिन राज तन मंदिर में चेतन राज, मंदिर में श्री जिन राज तन मंदिर में चेतन राज, तन चेतन को भिन्न पहचान जीवन सफल हुआ है आज, तन के तन को भिन्न पहचान जीवन सफल हुआ।
समझ समझ में आ रही है बात? रोम रोम पुलकित हो जाए जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से। फिर क्या कह दिया यहाँ, गिरी गिरनार शिखर विख्यात, दूसरी लाइन चंद्र जो बोला है उसकी, गिरनार पर्वत बहुत विख्यात है, वहाँ मुनिराज निवास करते थे, डरते नाचारे वहाँ रहा करते थे। व्याख्या प्रज्ञप्ति और दृष्टिवाद का कुछ ज्ञान इनको था, वो कैसे सुरक्षित हो इसकी चिंता इनको होगी, ये सुरक्षित कैसे हो? और गुरु की कृपा से कृपा निधान ऐसा योग बना कि दो मुनिराज द्वय मुनि महान उन्हें पढ़ाया निज श्रुत ज्ञान, जितना ज्ञान अपने पास में था वो दो मुनिराजों को, कौन कौन थे वो, इस प्रधान पर भूत बली उनको बुला करके उन्हें पढ़ाया और ये ऐसा काम हो गया। गुरु चरणों में हम भी अर्घ चढ़ा रहे हैं, लेकिन इस अर्घ को चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? अनर्घ दृष्टि में लाए। अनर्घ कहते हैं आत्म स्वभाव को, अनर्घ कहते हैं सिद्ध पद परम पवित्र अवस्था, वो दृष्टि में लाऊं, ऐसी भावना से यहाँ अर्घ समर्पित है। पहला अर्घ समर्पित करेंगे अंदर वालों में, अंदर वाले सर्कल में।
ओम रीम श्री अंग पूर्वांग अंशधारी धरते नाचार्य देवाय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा।
अब पुष्प दंत मुनिराज के लिए अर्घ,
पुष्प दंत मुनिराज महान सुर गण पूजित गुरु गुण खान, स्वयं विवेकी प्रज्ञावंत शुद्ध गुरु का किया शुद्ध गुरु का एक मंत्र, ज्ञान किया मुनि ने लिपिबद्ध सूत्र एक सो सत्तर बाद,
देखिए ये पुष्प दंत आचार्य को अर्घ समर्पित है। धरसेन आचार्य के आदेश से ये गिरनार पर आ गए और वहाँ आकर अपने विवेक से शुद्ध किया उन्होंने मंत्र को अपनी बुद्धि से, और अनुभव में आत्म ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया। 177 सूत्र इन्होंने बनाए। ऐसे गुरु के चरणों में अनर्घ पद की प्राप्ति की भावना से अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम रीम श्री प्रथम सुन्द्र पुष्प दंत मुनि अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामी स्वाहा।
भूत बलि मुनिराज के लिए अर्घ, भूत बलि मुनिराज महान रत्नात्रय भूषित गुण खान पुष्प दंत संग किया विहार आएगी गिरनार मझार। गुरुधर तेन समीप निवास प्राप्त किया श्रुत ज्ञान विलास चढ़ाना है ना। देखो हाँ हाँ जी अभी ठहरो बोलूंगा तब। भूत बलि नाम के ये मुनिराज रत्नत्रय से विभूषित थे। पुष्प दंत आचार्य के साथ में ही वे गिरनार पर्वत पर आ गए। ये भी विवेकी थे, बहुत प्रज्ञावान थे। धरसेन आचार्य के साथ में ही रहकर इन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, सीखा और उस श्रुत ज्ञान को लिपिबद्ध किया 6000 सूत्रों में। 6000 सूत्रों में भूतबली आचार्य ने ये काम किया। पुष्पदंत आचार्य ने शुरुआत की थी, कितने सूत्र लिखे थे 177। ऐसे गुरु भूतबली आचार्य के प्रति यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम रीम श्री प्रथम श्रुत स्कंद प्रदात्री भूतबली मुनि अर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। वीर सेन आचार्य ये कौन आ गए बीच में, तीन ही तो थे। एक तो धरसेन आचार्य थे, एक पुष्पदंत आचार्य थे और फिर एक भूतबली आचार्य थे, तीन थे। ये चौथे कहाँ से आ गए, चौथे ही क्या नाम दे रहे हैं, वीर सेन आचार्य। देखिए शतखंडागम ग्रंथ जो लिखा गया सबसे पहले इन तीन आचार्यों के योगदान से, धरसेन आचार्य के निर्देशन और पुष्पदंत भूतबली के योग से जो लिखा गया, उस महान ग्रंथ के ऊपर कुछ व्याख्या लिखी, टीका लिखी। वो टीका कहलाई भवला, धवला टीका। वो किसने लिखी, वो वीर सेन आचार्य ने लिखी। वो शतखंडागम की टीका है, उस धवला का डायरेक्ट संबंध शतखंडागम से और शतखंडागम का डायरेक्ट संबंध भगवान महावीर स्वामी की वाणी से। ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी को उसको विस्तार करने में ये वीर सेन आचार्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस उद्देश्य से वीर सेन स्वामी को यहाँ याद किया जा रहा है। चंद बोलते हैं उसके बाद समर्पित करेंगे अर्घ। हाँ हाँ, मैंने वीर सेन आचार्य ने जो काम किया ना, वो काम जब कुछ और बच गया अंत अंत में, तो फिर इनका तो हो गया निर्वाण तो नहीं कहेंगे, स्वर्गवास हो गया। और फिर जिन सेन ने कुछ काम किया, हाँ पहले बोले डबला भी है, नहीं उजला दिन नहीं किया सबने ज्ञान चंद्र का है। उसकी टीका की टीका है, फिर और व्याख्या है। हालांकि शतखंडा का मूल्य भी मिलता है और धवला भी मिलती है। धवला 16 पुर से प्रकाशित हुई है, जो उसके 16 भाग है, समय सार जैसे मोटे मोटे। ये जो ग्रंथ विराजमान है ना बीच में, समय सार बीच में जो यहाँ मंडल से रखा हुआ है, इतने मोटे मोटे 16 ग्रंथ धवला के है। बताता हूँ क्या चीजें। और ये तो ये 16 भाग हैं, ये सब 177 सूत्र जो लिखे थे ना पुष्पदंताचार्य ने, उनकी व्याख्या है। 16 ग्रंथ है इतने मोटे मोटे पोषण ने। और ये जो भूतबली आचार्य ने लिखे थे, इनकी व्याख्या नहीं है, ये महाधवला कहलाता है। 7 भाग है इसके, 6000 श्लोक प्रमाण, 7 ग्रंथ हो गए। तो 16 वो और 7 ये। और एक नाम आएगा शतखंडागम के समकालीन लिखा जा रहा था, गुणधर आचार्य के माध्यम से आगे आगे चढ़ाएंगे इसके बाद वाला, कषाय पाहुर लिखा जा रहा था, उसकी टीका कहलाती है जय धवला।
तो जय धवला कह जाती है। तो धवला, जय धवला, महाधवला, ये सब भगवान महावीर स्वामी की वाणी को लिपिबद्ध किए गए ग्रंथ हैं, ये महान ग्रंथ हैं। आज भी दिगंबर परंपरा में विशेष रूप से जब कभी भी किसी मैटर पर कुछ विवाद खड़ा हो जाता है और बात की जाती है आगम प्रमाण से, रेफरेंस से, किसी ने किसी ग्रंथ का प्रमाण दिया, किसी ने किसी ग्रंथ का प्रमाण दिया, लेकिन दिनेश भाई जब धवला का प्रमाण सामने दे दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाता है, इसके आगे किसी की जवान नहीं चलती। ये लिखा है, ये जो लिखा है ना, ये वाणी है भगवान महावीर स्वामी की। गुरु के प्रति इतना विनय का भाव, गुरु ने जो वचन कह दिया, समझ में आ रही है ये बात, इतना बहुमान, ये तो धवला के प्रति विनय, चटखंडागम के प्रति विनय, जिनवाणी के प्रति विनय। अरे जिसके हृदय में जिनवाणी के प्रति विनय नहीं है उसके हृदय में गुरु के प्रति विनय कैसे होगी, और गुरु की विनय का सच्चा स्वरूप क्या है, उनके द्वारा कहे गए वचनों पर श्रद्धा। गुरु को रोजाना आगे चढ़ाए, उनके पांव पड़े, बोलो कितना श्रद्धावान है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, पांव दबाता है गुरु के, लेकिन गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता, तो क्या शिष्य कहलाने के योग्य है। गुरु के बताए मार्ग पर चले, तो ये जो धवला है ये महान ग्रंथ है भाई। फिर इन महान ग्रंथों के, बहुत महान महान ग्रंथ के, एक शॉर्ट संक्षेप दो मिनट में बात कहता हूँ, जान देना मोहित भाई, ये जो ग्रंथ थे महान ग्रंथ, इन ग्रंथों का स्वाध्याय गिरनार पर्वत पर, गिरनार में उधर दक्षिण भारत में, ये अपने नैनीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य कर रहे थे धवलादि ग्रंथों का, लिखे उसके 1000 वर्ष बाद, लिखे थे 2000 साल पहले, उसके करीब 900 वर्ष बाद नैनीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य इनका अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते ही एक चामुंड राय राजा वो उनके पास में आए, जैसे ही राजा चामुंड राय आए तो उन्होंने ग्रंथ बंद कर दिया, तुरंत उठाकर के साइड में रख दिया। तो राजा ने कही कि महाराज हमारे लिए भी आपने आते ही बंद कर दिया, हम समझे क्या गलती हो गई, हम भी सुन ले रहे कुछ, आप जो बांच रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम जैसे राजनीति और घर गृहस्थी में उलझे लोगों के लिए ये शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं, तुम जो उलझे फंसे हो राज देश माया क्या कचाइयों के चक्कर में, ये महान ग्रंथ तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं है। तो फिर महाराज हमारे लिए कुछ, तो नैनीचंद्राचार्य देव ने उसका तार लेकर गोमट पार लिखे, तो शटखंडागम का तार लेकर के, धवला का तार लेकर के, समझ में आई आपने, नैनीचंद्राचार्य देव ने किसके लिए, चामुंड राय के लिए गोमट पार जीव कांड, गोमट पार कर्म कांड, लब्धि सार, सपना सार, इन ग्रंथों की रचना की। ये वो चामुंड राय है, ये वो नैनीचंद्राचार्य है जिनके निर्देशन में श्रवण देव बोला में बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनी। इसकी भी कहानी सुन लो संक्षेप में, चामुंड राय की माँ को रात को सपना आया और सपने में उसने बाहुबली भगवान को देखा और उसने कहा कि भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली भगवान की कोई पन्ने की प्रतिमा, बहुत विशाल प्रतिमा विराजमान की थी कहीं, मैं तो उसके दर्शन किए बिना नीचे का त्याग करती हूँ, मुझे तो उसके दर्शन करा। चामुंड राय से कहा, चामुंड राय ने चारों तरफ तलाशा, कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई खबर नहीं, दूर देशांतरों तक जाते गए, गमन करते रहे, विहार करते इधर से उधर, उधर से उधर, माँ को साथ में लेकर के दर्शन कराने के लिए कहीं कहाँ विराजमान की थी उसने, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। उन्होंने जाकर के रात्रि विश्राम किया एक चंद्रगिरी नामक पर्वत पर, हाँ ये पर्वत है, वहां जाकर के विश्राम किया। रात्रि विश्राम किया तो चंद्रगुप्त को, ये जो चामुंड राय था, इस चामुंड राय को स्वप्न आया, वो जो चंद्रगिरी पर्वत है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर है उस पर्वत का नाम। तो इनको स्वप्न आया और सपने में आया कि सुनो, सुबह उठने के पश्चात जहाँ उठो उठने के पश्चात सामने तीर चलाना, तुम्हारी वो प्रतिमा नजर आएगी सामने पहाड़ी पर, तीर चलाओगे। तो इन्होंने उठने के बाद सामने पहाड़ी पर तीर चलाया और पहाड़ी का जो बहुत दूर जो पहाड़ी थी, तीर चला तो पत्थर टूट टूट करके इधर उधर हुए और बीच में ऐसी सुंदर आकृति दिखाई दी तो बाहुबली की आकृति जैसी थी। माँ को दर्शन कराए और उनकी प्रतिज्ञा करी और फिर उसके बाद चामुंडराय के निर्देशन में उसी पहाड़ी को व्यवस्थित कराकर बाहुबली भगवान का आकार दिया गया। कैसी रचना हुई ये पर ही शतकंडागम से जुड़ी हुई रचना ही ये पूरी की पूरी जो कथा मैंने सुनाई। मुझे मालूम है कुछ याद नहीं रहेगी आप आधी बातें तो भूल गए होंगे जितनी चाहिए। अच्छी बात है आप भूलोगे नहीं तो फिर अगली बार आके क्या बताऊंगा। थोड़ा भूल जाओ फिर थोड़ा सा बताएंगे आपको आकर के। चलो ये वीर सेनाचार्य धावला आदि टीकाएं इनके माध्यम से लिखी गई ये वीर सेनाचार्य के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। चले बोलते हैं चंद देखना। वीर सेन आचार्य महान आर्य नंदी गुरु थे गुण खान धवल बुद्धिदारी सुविचार अठ सो सोले कन शुभ काल अक्टूबर महीना दिन आठ लोक बेहतर सैस प्रमाण धवला में निर्मल श्रुत ज्ञान जय धवला ही रखी मान वीर सैत्र श्लोक प्रमाण गुरु चरणों में आर्य ये वीर सेन नाम के महान आचार्य आर्य नंदी इनके गुरु थे। धवला की इन्होंने रचना की कब सन 816 संवत 816 अभी चल रहा है 2019 तो सन 816 में अक्टूबर का महीना और 8 तारीख 8 अक्टूबर सन 816 उसमें धवला टीका की रचना हुई। 72,000 श्लोक प्रमाण 20,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की इतना महान काम वीरसेन स्वामी ने किया है हम उनके चरणों में अर्घ समर्पित कर रहे हैं। आगे वाले ओम पर इधर वाले पर है ना उच्चरी ओम रीम श्री प्रथम श्रुति स्कंध टीकाकार वीर सेनाचार्य देवाय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। गुणधराचार्य के लिए अर्घ गुण भूषण गुण धर आचार्य परिणति पाप रहित अधिकार ग्रंथ सकाय पहुर्दातार निष्कषाय परिणति व्यापार गुणधर नाम के आचार्य इन्होंने भी श्रुति स्कंद बनाया श्रुति स्कंद की रचना की इन्होंने उसका नाम था कषाय पाहुर नाम का ग्रंथ इनके माध्यम से लिखा गया उनकी दिशा है जय धवला कषाय पाहुर की दिशा। ओम श्री प्रथम श्रुति स्कंद टीकाकार वीर सेनाचार्य देवाय अर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामी स्वाहा। अब ये शतखंडागम की बहुत संक्षिप्त कहानी यहाँ इस जयमाला में बता रहे हैं। बोलिए कैसे बोलेंगे मराठा माधवी छंद है पाँच रे और बार रे के आज
अधिक रुद ज्ञान में कहते हो ये ज्ञान सुरक्षित चिंता की आचार्य को दक्षिण ले संदेशा भेजा भेजो दो मुनिराज को पुष्पूत भरी दो मुनि आए नैर्य बुद्धि की हुई परीक्षा सफल हुए मुनिवर प्रवर मुनिवर की अनुपम प्रतिभान शिक्षा दिया आचार्य ने छह खंडों में किया सुरक्षित उन दोनों मुनिराज प्रथम ग्रंथ रीतिवत हुआ था जिस शुक्ल पंचमी अपूर्ण आठ साधनारत मुनि त्रयका हम सब पर उपकार क्या लिख दिया यहाँ तक वही कहानी दर देना क्या है अपने ध्यान में विचरण करते थे पांचवें और बारहवें अंग का अंशित ध्यान था कैसे सुरक्षित हो यह हुई चिंता और फिर दक्षिण देश में भेजा संदेश दो मुनिराजों को बुलाया पुष्प दंत और भूत बलि गिरनार आ गए उनके धैर्य की हुई परीक्षा और फिर उसके पश्चात छह खंडों को उन्होंने किया सुरक्षित छह खंड हाँ इसमें नहीं है इसी जो राउंड था उसी में आप समर्पित करेंगे कर सकते हैं कर सकते आ जाइए और भी आ जाइए लेकिन अंदर वाले राउंड में हाँ उसी में सेंटर में करना बीच में अभी तो बोलना है अपने को आगे और
वीर सेन आचार्य ने टीका लिखी महान धवला जय धवला हो करे जगत गुणगान जिन वर अरुआचार्य का है महान उपकार हर समर्पित भक्ति से नमस्कार
खड़े हो जाए तभी अब छठ खंडागम क्या चीज है छठ खंडागम क्या ग्रंथ है उसकी थोड़ी चर्चा इस पूजन में की गई है ये तो मंगलाचरण है उसका और फिर उसके बाद स्थापना का छंद होगा हम बोलते हैं यहाँ से
श्रीमत् परम गंभीर लाछनम जीयात्रोक्य नाथ्य है शासनम जन शासनम श्रीमान भरतरेन नाम सुगुरु श्री जैनेन्द्र जैन सिद्धांत सद वाद्य सुरधर पुष्प दंत सुनि श्री भूत गुरु बलि ये सन्मुनयो जगत्रयता स्वर्गामरेरंचिता धर्म कर्मणि मतिम स्वर्गापवर्गे प्रदेशीरसेन इत्याख भट्टारक प्रथुकृत पुनातु पूतात्मा வாதி வந்தாரு கோமுனிய நவநாம் வாரத்தின் தத்திய கீர்த்தின் சேஷத்தின் நிர்மலாம் கௌரி கிருதனீஷேஷு புவனாம் தாண்டமாம்யம் பூயாதானீர் தேனச்ச சந்தோனோவதாசிரம் சாசன ஜகபதி ஜகத மே ஜயவந்த ூபீ கர்ம மே மம மதிதரே ஆசோ வாதியோ மேஷேன பவித்திர ஆத்மா முதல கீர்த்திமல கரதி சகல ஜகதோ உமன ஹோ நீர சேனாச்சாரியேஸ்வர வீர கா ரச்சனா முனீஷ
சித்தாந்த கிசி கேத்தே சித்தாந்த ஹம் கேத்தே சித்தாந்த ஜிக்கே அந்த சித்த அவஸ்தா தக் பஹா ஜா சகே உஸ்கா நாம சித்த அந்த सिद्धांत की अंतिम लाइन में ये बात कही सेकंड लास्ट लाइन में सिद्ध के गुणगान से जो प्राप्त होता अंत में सिद्धांत कहते हैं उसे उसे कहते हैं सिद्धांत परिपुष्पांजलि शिपेत स्थापना
वीर प्रभु गौतम गुरु को कर जोरी प्रणाम द्वादशांग श्रुत प्रकट हो वरते ऐसा ज्ञान भाव सहित पूजा
पंचमी का दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन ये श्रुत के अवतार का दिन है। श्रुत अवतरित हुआ, श्रुत माने शास्त्र, शास्त्र लेखन जिस दिन हुआ ये वो दिन है। ज्ञान की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। ज्ञान अद्भुत महिमावान है, तो उसकी महिमा की चर्चा इसमें होगी। शतखंडागम की विषय वस्तु की चर्चा भी इसमें होगी कि शतखंडागम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। ओम ह्रीम श्री शतखंडागम स्वरूप प्रसंस्कृत स्कंद अत्र अवसर अवसर संभोषणे देवोरिनम।
ओम ब्रीम श्री चतखंडागम स्वरूप प्रथम श्रुति स्कंधापनम ओम ब्रीम श्री चतखंडागम स्वरूप प्रथम श्रुति स्कंध अत्र मम सने तो भवयत सन्नी सर्वे
वेदांत ज्ञान पुनीर निर्मल मोह मल शालित करे जिन चरण में अर्पित करे भलि जीव भव सागर करे
स्वरूप षडखंडागम ग्रंथाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपाणी
प्रभु चरण अर्चित करो ग्रंथ पढ़ चेतन अखंड पद लघु घर तेन गुरु खोश गंतरूद बलि पढ़ी
सिंह संस्कृत स्कंद स्वरूप षड घंटागम ग्रंथाय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपाणी
सिद्धांत खंड चेतन अखंड पद लघु नर तेन गुरु को प्रदान तरूद
अक्षरानी दे
सिद्धांत सुमन बलिजन भ्रमर चेत रमावते
स्वरूप षट खंडागम ग्रंथाय सामान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपाणी
सिद्धांत रक्षित को शुदान
सुंदर लाइन आ गई है सिद्धांत रस के रसिक जन को क्षुदा नहीं पीड़ित करे जिनको सिद्धांत का रस आता है जिन्हें आत्मा का रस चढ़ता है
जिन्हें मजा आ रहा होता है पूजन में, विधान में, भक्ति में, सत्संग में, फिर उनको भूख नहीं लगती, तो रस अलग आ रहा है। आपने ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत देखे होंगे, उपन्यास पढ़ते हैं तो सब भूल जाते हैं, खाना पीना याद नहीं रहता जब तक वो उपन्यास खत्म नहीं हो, ऐसा होता है देखा कभी? वो रस ही अलग प्रकार का होता है। इन सिद्धांतों की चतखंडागम की व्याख्याएं या सार रूप लिखा गोमटपार, और गोमटपार की टीकाएं लिखी टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका। उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका को जो उन्होंने लिखा, वो जब लिख रहे थे तो एक दिन उनकी माँ से भोजन में नमक डालने से रह गया, 300 साल पहले की घटना है। टोडरमल जी कौन थे ये जानना हो तो एक प्रवचन है मेरा टोडरमल जी का जीवन परिचय, तो कौन थे जयपुर के निवासी, कौन है 300 साल पहले, ये लिख रहे थे। इसी चतखंडागम की व्याख्या की व्याख्या चल रही थी समय ज्ञान चंद्री का, भोजन में नमक डालना भूल गई माँ, इनको भोजन कराया, इनको कुछ ध्यान नहीं था भोजन कर लिया, फिर बाद में माँ ने भोजन किया तो माँ ने भोजन किया थोड़े आज तो नमक ही नहीं डाला, तो ये तो खाली है इसमें, तो इसको तो पता ही नहीं चला। दूसरे दिन माँ ने जान बूझ कर नमक नहीं डाला, महेंद्र भाई 6 महीने तक चला ऐसा, 6 महीने तक, और 6 महीने हुए तो उसके बाद अचानक एक दिन भोजन करते हुए वो बोले कि माँ आज सब्जी में नमक नहीं डाला क्या? तो माँ ने कहा कि तू जो ग्रंथ लिख रहा था वो पूरा हो गया लगता है, यहाँ पूरा हो गया। अरे मैं तो पिछले 6 महीने से नमक नहीं डाल रही हूँ, माने वो दिमाग में दिलो दिमाग में वो ग्रंथ उसकी विषय वस्तु और वो इतनी दिमाग में चलती थी कि भोजन में क्या डला है और क्या है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगी, इतना चित्त की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता होती है। तो इन्होंने यहाँ क्या कहा, सिद्धांत का रस जिन रसिक जनों को आता है उनको भूख की पीड़ा नहीं लगती, और ये भक्ति का रस, ये भक्ति रस को करते करते जब आत्मा का रस आता है तो फिर भव रोग स्वयं चला जाता है। क्या सुधा रोग की बात करें, भव रोग चला जाता है। ओम रीम श्री प्रथम शुद्ध स्कंद स्वरूप चतुर्गम ग्रंथाय सुधा रोग जनाचनाय नैवेद्यम निर्वपामी सिद्धांत दीप प्रकाशने पर वेद जानते निजी चित्त स्वरूप निहारते, अपने चित्त स्वरूप को निहारने की बात कही है। आगे
चतुर्खंड आगम ग्रंथ पर
प्रथम श्रुत स्कंद स्वरूप षटखंडागम ग्रंथाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामी
सिद्धांत ज्ञान सुधूप ज्ञानानि प्रज्वलित भवि करे चतुर्खंड आगम ग्रंथ पर केतन अखंड स्वपद लघु
सिद्धांत ज्ञान की धूप लेकर। कौन सी धूप? धूप चढ़ाते हैं, धूप से पूजन करते हैं ना भगवान की, कौन सी धूप है? ये ज्ञान की धूप है। सिद्धांत ज्ञान को धूप लेकर ज्ञान रूपी अग्नि में उस ज्ञान को प्रज्वलित करो, निष्काम जिनवर की अर्चना करो, निष्काम होकर, कोई डिमांड नहीं, कोई कामना नहीं, कोई भगवान से कुछ मांगना नहीं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में रंच मात्र भिखारीपन नहीं। लक्ष्य भाई अपने भगवान कैसे बैठे हैं सामने देवी पर हाथ से हाथ करके कैसे बैठे कैसे विराजमान है। भेद नहीं करना भी दिगंबर से सितंबर का भगवान जैनियों के भगवान कैसे होते हैं आशीर्वाद देने वाले हाथ से हाथ धर के बैठते हैं। भगवान भला नहीं करते भाई साहब ये सिखाता है जैन धर्म। ज्ञान को ज्ञान में समाहित करो ये बात यहाँ कही गई है। ज्ञान की महिमा है। आप जानते हैं ये पूज्य क्यों हुए आप क्यों करते हैं वही बहन की पूजन क्यों करते हैं अपन ये क्यों पूज्य है ज्ञान की वजह से पूज्य है। दो चीजें होती है जो व्यक्ति को पूज्य बनाती है। दूसरे शब्द के शब्द दूसरे देता हूँ। दो चीजें होती है जो व्यक्ति को महान बनाती है जो व्यक्ति को दुनिया में पूज्य बनाती है। इस पूरी दुनिया में इस धरती पर इस धरातल पर जैनियों की बात नहीं कर रहा कोई भी व्यक्ति हो कौन व्यक्ति महान होगा जिसमें ज्ञान विशेष होगा और जिसका आचरण विशेष होगा। ज्ञान और चारित्र ये दो चीजें जिसके पास में है समझ लो आप वो दुनिया में महात्मा हो गया संत हो गया सिद्ध हो गया भगवान हो गया पूरी दुनिया में भगवान जैसा पूजा जाएगा। कौन व्यक्ति ज्ञान और आचरण दो चीजें हैं। जिस जिस में जितना जितना ज्ञान है ज्ञान बढ़ता चला जाए लेकिन आचरण अच्छा नहीं हो तो लोग दुतु करेंगे और आचरण बहुत उत्कृष्ट हो और ज्ञान नहीं हो तो कौन सम्मान करेंगे पूजा कर ज्ञान ही नहीं है यार आचरण तो बहुत अच्छा पालन करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान भी बहुत है और आचरण भी उत्कृष्ट है वो अपने आप सारी दुनिया उनके आगे झुकती है। सुनो सच्चे ज्ञान और सच्चा आचरण तो हमारे परमात्मा में है हमारे मुनिवरों में है लेकिन जिनके जीवन में सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण कदाचित न हो लौकिक ज्ञान और लौकिक आचरण भी हो वो भी महान हो जाते हैं। चाहे वो दयानंद सरस्वती हो चाहे विवेकानंद स्वामी विवेकानंद हो चाहे विनोबा भावे जैसे लोग हो चाहे महात्मा गांधी जैसे लोग हो ये क्यों महान हो गए बतलाओ मेरे को क्या था इनमें। भगवान थे भगवान तो नहीं थे क्या था कुछ नॉलेज कुछ ज्ञान विशेष था और कुछ बातों का इन्होंने विरोध किया। कौन सी बातों का जो झगड़ा बढ़ाने वाली थी जो विवाद बढ़ाने वाली थी जो राग द्वेष बढ़ाने वाली थी उन बातों का इन्होंने निषेध किया। इसलिए आज जगत में स्वामी विवेकानंद का नाम चलता है दुनिया में क्यों छुआछूत का निषेध किया उन्होंने जातिवाद का निषेध किया उन्होंने उन्होंने भेदभाव का निषेध किया। महान हो उनकी महानता का आधार क्या है कि लौकिक नीच रास्ता और ज्ञान विशेष ये दो चीजें जहां हो वो हो जाते हैं महान। ये हैं हमारे परमात्मा ज्ञान की महिमा और ध्यान की महिमा। ज्ञान और ध्यान दो चीजें उत्कृष्ट चारित्र और उत्कृष्ट ज्ञान। अंधश्रद्धा तब होती है जब समझ नहीं होती है। जब समझ नहीं होती है ना तो फिर अंधा हो जाता है व्यक्ति। समझ पूर्वक श्रद्धा हो ये बात यहाँ कही जा रही है। चलिए अर्घ के गवा रहे हैं अपन धूम सुर ओम ऋण से प्रथम स्वरूप शतखंडागम ग्रंथाए हस्त कर्म जनाए धूपम निर्वपाणी थी स्वाहा सिद्धांत बोध सुवृक्ष पर केवल्यपन निश्चित रहे शतखंड आगम ग्रंथ पढ़ के तन अखंड स्वबल तू नरतेन गुरु खुश सरभूत सिद्धांत रूपी बोध के वृक्ष पर ही केवल ज्ञान रूपी फल निश्चित रूप से फलते हैं लेकिन भक्ति कैसी हो निर्वांचक, निर्वांचक हो प्रभु अर्ज, ये आराधना हमारी, हमारी ये आराधना, हमारी ये भक्ति ये निर्वांचक हो, मांगना नहीं हो। अरे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हारे को, तुम बिना चाहे मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा, तुम मांग कर अपनी जवान खराब मत करो, तुम मांग कर अपने अंदर के भिखारी दृष्टि को प्रदर्शित मत करो। मैं कहता हूं ना कई बार, दो तरह के भिखारी, पहले कही है आपके सेंटर में कई बार बात, भिखारी दो तरह के होते। मोहित भाई कहाँ होते हैं? दिलीप भाई, दो तरह के भिखारी, एक भिखारी वो जो हिंदुस्तान में मंदिरों के बाहर डेरा सर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं, एक बाहर बैठकर भीख मांगने वाले, और दूसरे अंदर आकर के मांगने वाले। लेकिन कुछ फर्क है दोनों में, जो बाहर बैठा हुआ भिखारी दिखता है वो फटे हाल होता है, और जो अंदर आने वाला भिखारी दिखता है वो थोड़ा अप टू डेट दिखता है। जो बाहर बैठा हुआ भिखारी होता है उसकी डिमांड कितनी होती है, एक दो डॉलर में आपको इतना आशीर्वाद दे रहे कि भगवान तुम्हारा भला करेंगे, दो डॉलर दे तो। और यहाँ अंदर आने वाले की डिमांड दो डॉलर की नहीं होती, ये दो डॉलर तो चढ़ाता है और डिमांड दो मिलियन की करता है भगवान के पास आकर के। ये थोड़ा स्टैंडर्ड का भिखारी है, ये भिखारी पर मिट जाए नहीं, ऐसी दृष्टि हमारी नहीं रहे। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलो, जिस पंथ चले भगवंत वही आदरणा, जिस पंथ पर भगवान चले हैं उसी पंथ पर हमारे को चलना है। ये वैराग्य का मार्ग है, ये संयम का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है, ये भोग का मार्ग नहीं है। जैन परंपरा त्याग का रास्ता सिखाती है, आराधना का रास्ता सिखाती है, बस गुरु का हाथ पकड़ लो, उनके निर्देशन में उनके बताए अनुसार चलो, तुम पार लग जाओगे। देखो निर्वांचक भक्ति से मैंने ये बात कही, लेकिन लाइन पढ़ी थी मैंने, ये प्रभु भक्ति निर्वांचक फले, निर्वांचक भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में भिखारीपन किंचित मात्र भी ना हो, रंच मात्र भी ना हो। ओम ह्रीम श्री प्रथम श्रुति स्कंद स्वरूप शत खंडार्थम ग्रंथाय मोक्ष फल प्राप्ते परम निर्वपाने सिद्धांत स्वरूप षट खंडागम ग्रंथाय नरगमन प्राप्ते अर्घम निर्वपामि स्वाहा। गुरु धरते नाचार्य के चरणों का धरि ध्यान, उस अनंत अनुभूत बलि हो नित करूं प्रणाम। शास्त्र की महिमा चित मेरा, द्वादशांग ज्ञान को पूजो अर्घ बनाए, भक्ति पूर्वक मैं करूं पुष्पांजलिंग। देखिए शत खंडालम ग्रंथ जो लिख करके पूर्ण हुआ था, इस श्रुत पंचमी ज्ञान पंचमी के दिन उसके छह खंड थे, षट माने सिक्स खंड, उन छह खंडों की विषय वस्तु क्या है वो यहाँ धीरे धीरे बता रहे हैं। उनमें आखिर वर्णन किस बात का है। सबसे पहला जीवन खान नाम का यह खंड है जिसके लिए हम यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। आप लोगों में से जिनकी भी भावना हो वे आगे आएंगे, संत बोलने के हाथ चढ़ाएंगे अपन।
पहला जीव स्थान खंड है अर्शनु योग द्वार से योग सत संख्यारु क्षेत्र स्पर्श काल भाव अंतर से योग अंत बहुत्वर चूलिका सम्यकोक्ति का वर्णन इतने किया गया गुण खान मारना कथन पर सहस अठारह में मिलता शुद्ध भक्ति कार्य ले शोधूं श्रुत का सार जिसके ये वेद पर वह वेद किस भार।
क्या नाम था पहले खंड का? जीवत्थान। जीवत्थान इसमें क्या वर्णन है? ये जो वर्णन आया है ना उमा स्वामी आचार्य ने जो वर्णन किया है सत्वा सूत्र के पहले अध्याय में सप्त संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावांतर बहुत इसके पहले अध्याय का आठवां सूत्र है। उस सूत्र को बेस बनाकर ये पहला खंड है। जीवत्थान सत की चर्चा संख्या की सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत इन सब के प्रकरण इस पहले जीवन खान खंड में आए हैं। हम अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीम श्री जीवन खान समन्वित द्वादशांश्रुतियां आये अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपाणी स्वाहा। द्वितीय श्रुति स्कंध द्वितीय खंड जिसका नाम है खुद्दा बंध। पहले का नाम क्या था? जीवत्थान। दूसरा है खुद्दा बंध। इसमें क्या वर्णन है?
ग्यारह अधिकारों में कर्म बंध वेदों की महाकथा अंतर कार्य तथा स्वामेश्वर बंध विषय त्रय अनुगम द्वार। मैं अवध प्रश हूँ कर अनर्घ अधिकार।
खुद्दा बंध नाम के इस अधिकार में शुल्लक बंध को नाम कहा। ग्यारह अधिकार हैं। इसमें कर्म बंध के वेदों की कुछ महान कथाओं का वर्णन है। द्रव्य क्षेत्र स्पर्शन आदि का वर्णन है। कुछ अनुगम अल्प बहुत के रूप में भी लिखे गए हैं। शुद्ध नैसे ये चेतना कर्मों से कभी नहीं बंधा है। या आत्मा कर्म से कभी नहीं बंधा है, ये भी प्रकरण में आए हैं। ओम रीम श्री खुदा बंद समित द्वादशांग श्रुतियाणा नंद पत्रा से हर हम निर्वपानी तृतीय खंड बंद स्वामित्व विषय इसका नाम है। बोलिए
प्रकृति का वर्णन संविषयों का इतने वर्णन शुद्ध भक्ति का
क्या क्या वर्णन है इसमें, नाम क्या है इसका, बंध स्वामित्व विषय, कौन से जीवों को कौन सा बंध होता है, कैसे परिणाम करने से कैसा बंध होता है, उसकी चर्चा इस पूरे खंड में है। हम कैसे कैसे भाव करते हैं, हमें कुछ अंदाजा नहीं है कहाँ कहाँ कैसे कैसे भाव बिगाड़ते रहते हैं, किधर परिणाम बिगड़े और सब कुछ बिगड़ गया, सारा खेल हमारे हाथ में है भाई साहब। इसके लिए हमारे हाथ में मुकुंद भाई, हम अपने ज्ञान, अपने ध्यान, अपना चित्त, अपना मन उपयोग इसके स्टीयरिंग को जिधर घुमाएंगे हमारे गाड़ी उधर ही पहुंच जाएगी। हमें पता नहीं है कि हमारा स्टीयरिंग गलती से नरक की तरफ घूम गया, हमें मालूम नहीं है स्टीयरिंग हमने उपयोग का स्टीयरिंग निरोध की तरफ घुमा दिया। भाई साहब अपने परिणामों को संभालो, कौन से परिणाम का कैसा फल होता है, किसकी चर्चा बंद होता है, उसकी चर्चा यहाँ पे ही है। फल की चर्चा आगे वेदना नामक अधिकार में होगी। ओम रीम श्री बंद स्वामित्व विषय संबंधित द्वादशांग श्रुतियाणाये अनर्घ फल प्राप्त है हरहम निर्वपामी स्वाहा। जिसमें फल की चर्चा की गई, कर्मों का फल कैसा कैसा मिलता है, इसकी विस्तार से चर्चा इस खंड में की गई है। अब पंचम खंड जिसका नाम है वर्गणा, वर्गणा खंड में क्या कहते हैं देखिए।
Oh, my God.
परगणा नाम का पांचवा खंड था। इन पांच खंडों की रचना वीर सेनाचार्य के माध्यम से हुई और इसमें 10 प्रकार के बंद कर्म का वर्णन है। 10 प्रकार के कर्म कौन से हैं? बंद, सत्ता, उदय, उजीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण है, निरंति, निकाचित, तीन कर्म है, उनका वर्णन इस वर्गणा खंड में है। अर्घ चढ़ाएंगे अपन लोग। ओम ह्रीं श्री वर्गणा खंड तमन स्वादिष्टं श्रुतियानाय अर्घ पत्रात्ते अर्घं निर्वपानी की स्वाहा। छठा खंड महाबंध। आप जानते हैं ये महाबंध जो है, इस महाबंध में किसका वर्णन है? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। कल परसों बताया था मैंने, 7 मोटे मोटे ग्रंथ हैं इस महाबंध के वर्णन के लिए, उनका वर्णन इससे है। चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रकार के बंध की चर्चा भूत बलि आचार्य ने महाबंध को रचा है। अर्घ चढ़ाएंगे हम लोग। आ जाऊ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे वाले में चढ़ा लेना। ओम ह्रीं श्री महाबंध समन्वित द्वादशांग श्रुतियानाय अर्घ पत्रात्ते अर्घं निर्वपामि इति स्वाहा। कषाय पावन हाथ पकड़ना पड़ेगा। कषाय पाहुल ग्रंथ षटखंडागम के समकालीन ही लिखा जा रहा था, उसको भी यहाँ अर्घ समर्पित करेंगे हम। पंच परमागम के लिए आए, उसके बाद पंच परमागम है उनके लिए आए। और कोई रेल तो नहीं है अभी? अभी है तो 11 से है वैसे, तो जो भी और हूँ। चलिए कली काल। आठ नंबर का कली काल ने सर्वज्ञवत गुरु कुंद कुंदाचार्य शिव मग प्रकाशक पंच परमागम सुरचना कार्य नव तत्व में घट आत्म ज्योति है समय के बार में ज्ञान सुख अरुगे का वर्णन सुख जन का मार्ग एवं मार्ग पर वर्णन नियम के बार में षड ग्राह्य और सनातनो व्याख्या पंचासी गायन
मार्ग
लागले शोभो सुते काता
देखिए पंच परमागम उनकी विषय वस्तु को भी यहाँ प्रदर्शित कर दिया गया। समय पार में किसका वर्णन है? नव तत्व में छिपी हुई आत्म ज्योति का वर्णन है। प्रवचन पार में ज्ञान सुख ज्ञेय आदि का वर्णन है। फिर नियम पार मार्ग और मार्ग फल का वर्णन है। और पंचाक्षी काय शत द्रव्य नव पदार्थ का वर्णन है। और अष्ट बाहुड़ मोक्ष मार्ग का वर्णन है। ये पंच परमागम जिन्होंने लिखे ऐसे कुंद कुंदाचार्य और पंच परमागमों के लिए अर्घ है। ओम ह्रीम श्री पंच परमागम समर्पित द्वादशांग श्रुतियाणाय अनर्घ पंत्रार्थे अर्घम निर्वपामी के स्वाहा। हाँ जी चार अनुयोग जानते हैं ना, चार अनुयोग। हाँ प्रथमानुयोग करणानुयोग करणानुयोग द्रव्यानुयोग उनके चर्चा है। प्रथमानुयोग का के लिए अर्घ है। प्रथमानुयोग में किन बातों का वर्णन है सुनना ध्यान से पढ़ना।
मंद बुद्धि की मोको यह प्रथमानुयोग जिन वर कहते पौराणिक पुरुषों के जीवन की घटना वर्णन करते। सद्भूत व्यवहार से
वर्णन प्रथमानुयोग में पुण्य और पाप का फल, कथाओं की चर्चा है, कहानियों की चर्चा है, स्टोरी कथानुयोग भी कहते हैं इसको। कथाएं हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र है, कीर्तनकारों की कहानियां हैं, रामचंद्र की कहानी, पद्म पुराण, कौरवों पांडवों की कहानी, ये सब कहानियां जितने हो वो सब प्रथमानुयोग हैं। और पुण्य पाप का फल बता करके अंत में राजा महाराजा चक्रवर्तियों की कथा सुना करके अंत में क्या करते हैं? वैराग्य लाना वही है, सब कुछ दिखा करके कार्य समर्पित करते हैं। ओम ह्रीम श्री जिनमुखोद्भूत प्रथमानुयोग शास्त्रे अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामी स्वाहा। करणानुयोग, करणानुयोग में क्या वर्णन है? अर्घम निर्वपामी स्वाहा। कर्ण प्रकृतियों से बंधन हर उदय आदि वर्णन करके पर आश्रित व्यवहार से जीव स्वरूप ज्ञान राज की भिन्नता मात्र प्रयोजन भूत। करणानुयोग कर्म प्रकृतियों का वर्णन है करणानुयोग में। सिद्धांत की चर्चाएं जहाँ हो, ज्योग्राफी की, भूगोल की चर्चा जहाँ हो, तीन लोक की, जम्बूद्वीप की, जो ऊर्ध्व लोक है, यादव लोक है, मध्य लोक है, चढ़ाई द्वीप है, ये सब चर्चाएं कहाँ हो, पंचमेरु की चर्चा हो,
ये पंचमेरु पर्वतों की चर्चा है, विदेश क्षेत्र की चर्चा, महा विदेश क्षेत्र की चर्चा, ये सब कर्णानुयोग के ग्रंथों में मिलती है। माने जितना हमारे पास में अवेलेबल साहित्य है, ग्रंथ है, उनको चार भागों में बांटा है। एक है कथानुयोग, प्रथमानुयोग, जितने कहानियां हैं पूरी की पूरी जितना रिटर्न अवेलेबल है ना, सबको चार भागों में बांट दिया। नंबर वन जितने कहानियां हो प्रथमानुयोग, सेकंड ये कर्णानुयोग, इसमें क्या वर्णन मिलेगा, ज्योग्राफी का वर्णन मिलेगा, कर्म सिद्धांत का वर्णन मिलेगा, दोनों स्थानों की चर्चा मिलेगी, ये सब कर्णानुयोग में, ये कर्णानुयोग के लिए अर्घ समर्पित कर रहे हैं अपन। ओम रीम श्री जिन मुखोद्भूत कर्णानुयोग शास्त्र अर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपाणी थी कर्णानुयोग।
किंतु मात्र उपचरित धर्म ये है के गुरु बन जाते अर्घम निर्वपाणीति स्वाहा।
ये था चरणानुयोग। चरणानुयोग क्या वर्णन है, चरणानुयोग में क्या है आचरण। तीसरा पार्ट, पहले में कहानियां, कथा, चल जीवन, फिर दूसरे में जैन भूगोल और कर्म सिद्धांत, फिर तीसरे में आचरण की चर्चा। आचरण किस प्रकार का है, उस आचरण की सारी चर्चाएं यहाँ हुई है चरणानुयोग के ग्रंथों में। श्रावक का आचरण, मुनिराजों का आचरण, मूल गुणों की चर्चा, व्रतों की चर्चा, ये सब चरणानुयोग में होती है। अब आगे है द्रव्यानुयोग। देखिए द्रव्यानुयोग में मूल बात मिलती है, द्रव्यानुयोग में द्रव्य की चर्चा, द्रव्यानुयोग है द्रव्य की बातें, तत्व की बातें, तत्वार्थ की मूल बातें, मूल आगम ग्रंथों की, आत्मा परमात्मा कैसे बने, ये सिद्धांत ये द्रव्यानुयोग में मिलेगा। ये आत्मा अनादि काल से संसार में घूम रहा है और मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो, ये चर्चा मिलेगी द्रव्यानुयोग में। देखिए बचा हुआ है। ये जो ओम है ना जो खाली है उससे चढ़ाना, राइट हैंड से चढ़ाना, उसको भी दे दो बच्चे के हाथ में नहीं है। ओम रीम श्री जिन मुखोद्भूत प्रथमानुयोग शास्त्र अनर्घ पद प्राप्त है
अर्घम निर्वपानी थी स्वाहा। हाँ जी पूर्ण अर्घ श्लोक में कर बैठ रखे जय हो जय दिन आलम की। सोले कन्नो में जय कबेला है कचारे बाहुल की। वीर सेन जिन सेन सूरी की रचना साठ हजारी। भूत बली कृष्णा महादवल कैलाशा शीत पैत लोक रचे जो सूक्ष्म बुद्धि पढ़ पाता। ज्ञायक को पहचानूं उसमें ही अपनापन करके वेदों को बस जानूं। ईश राग का पोषक है सृजन पर जीवाणी है सार अनुयोग कथन की कल्याणी। शुद्ध भक्ति का हर्जन प्रिय चैतन्य कुमार प्रिय चैतन्य कुमार। इसी में चाहिए ओम ह्रीम श्री जन्म खोज बुद्धवा विश्राम विष्णु ज्ञानाय अनंत पत्रा से पूर्णार्घम निर्वपानी ते स्वाहा। जय माला में कुछ वर्णन इसकी तुलना की है। ये छह खंड है ना, ये छठ खंड वाला इसकी तुलना की छह खंड को जीतने से चक्रवर्ती से उससे तुलना करके बात बताई है। पढ़ते हैं अपन
छठ खंड आगम ग्रंथ की महिमा जगत ख्याते हैं। यह प्रथम श्रुत इस कंद जिसने जैन शासन जाते हैं। तेन गुरु कुछ अंग एवं पूर्व के ज्ञाता हुए।
तो
से मिलना है, सब आ जाए लोग।
पठन कर धवल धीते भाग्य सुख पाते महान।
देखिए क्या कह दिया यहाँ, षट खंड आगम ग्रंथ की महिमा, षट खंड आगम की महिमा सारे जगत में विख्यात है। ये प्रथम श्रुति स्कंध है, सारा जैन शासन इसमें व्याप्त है। जैसे चक्रवर्ती छह खंडों को जीतते हैं, कैसे जीतते हैं, अपने ही पुरुषार्थ से। क्यों? छह खंडों को जानो, छह द्रव्यों को जानो। जैसे वो छह खंड को जीतता है, ऐसे तुम अपने पुरुषार्थ से छह द्रव्यों को जानो तो सुख रहे निज अर्थ में। देखो 28 पेज की लास्ट लाइन क्या लिखा है, सेकंड लास्ट लाइन देखो, 28 पेज की नीचे की दो लाइनें। जो चक्रवर्ती जीतते छठ खंड को पुरुषार्थ से, क्यों? जान कर छह द्रव्य भविजन सुख रहे निज अर्थ में। उसी तरह से भव्य जन भी छह द्रव्यों को जानकर सुख की प्राप्ति करें। देखो ध्यान देना, ये छह द्रव्यों के ज्ञान के बिना सुख मिलने वाला नहीं है, एक बात समझ लेना आप। खत्म हो रहा है, मैं क्यों छोड़ू बात कहने से, क्या है? काम नहीं चलेगा सच में इसको पढ़ने से, इसको पढ़े बिना, बिना सुने, बिना पढ़े, बिना सत्संग किए आप सोचो कि हमारा कल्याण हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, हमारे को मालूम ही नहीं है कि हमारी लाइफ जा कौन सी साइड में रही है, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा विनाश की तरफ जा रही है, विकास सोच रहे हैं और विनाश की तरफ जा रहे हैं, अंदाजा है आपको थोड़ा बहुत? जिधर आप सोच रहे हैं कि इस दिशा में हम बढ़ेंगे, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, अरे कितना भी इकट्ठा कर लो सुख मिलने वाला नहीं है। सुख और शांति का उपाय और मार्ग जो है वो मार्ग एकमात्र है ये वितरागी तत्व ज्ञान। इन बातों को समझे, इन बातों को गहराई से जाने, और उसके लिए जरूरी है सत्संग, प्रवचन, सभा, आयोजन, स्कॉलर्स को बुलाते हैं आकर के सुने नहीं तो क्या होगा बताओ। ये जो बात बताई जा रही है ये बात सुख के लिए है, ये बात शांति के लिए है। ये शांति विधान शांति के लिए नहीं, शांति विधान में जो बात कही गई है उसे समझने से शांति होगी। ये विधान किसका किया जा रहा है वो समझने से शांति होगी, करने से नहीं। हमने आकर के चढ़ा दिया, इस भावना से चढ़ाया, चलो मैं भी चढ़ा देता हूँ मेरा भी भला हो जाएगा, एक बादाम मैंने भी चढ़ाया था तो मेरा भी कल्याण हो गया थोड़ा सा, अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ, हे भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए, मेरा भी कुछ भला हो जाए। चले ये बता तू भला क्या चाहता है, किस बात से भला होगा? कुछ कमाने से, कुछ अच्छा बंगला हो जाने से, अच्छी महंगी गाड़ी हो जाने से, धन और दौलत वैभव संपत्ति मिल जाने से किससे शांति होगी? अरे मन शांत है तो सब शांत है, और मन अशांत है तो फिर कहीं शांति नहीं, कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है उससे। मन ही जिसका अशांत है तो फिर क्या करेगा बतलाओ, कितना भी इकट्ठा कर लो, सारा काम तो मन की शांति के लिए है ना। और मन कैसे शांत होगा, इस समझ से मन शांत होता है, ये समझने से इनकार करता है, हम क्या करें, ज्यादा समझदार बनता है, मैं इस पर समझता हूँ। अरे जिसके ऊपर कोई गुरु नहीं है उसका विनाश अवश्य भावी है, वो अपने आप को ही समझता है सब कुछ, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सब सही है। अरे भैया गुरु के निर्देशन में चल, क्या कह रहे हैं ये, क्या बातें कही जा रही है, ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, ये जनवाणी क्या कह रही है, ये पूजाएं क्या कह रही है। कोई भी पूजा करो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूजा कोई भी करो समझ के करो, धर्म की कोई भी क्रिया करो, प्रचार करो, अभिषेक करो, अर्घ समर्पित करो, जो भी करो समझ के करो, बिना समझे करने का कोई फल नहीं, कुछ फल नहीं है। बिना समझे करने में तो इसे तोता भी बोल देता है, पोपट पैरट, कोई रटाऊंगी वो रट लेगा, वो बोल देगा सुना देगा, करने पर चीजें से ले लेना फोटो, फोटो खींच रही है थोड़ा सावधानी से बैठना सब। हाँ हाँ अभी मेरे को मालूम है जब करने भाई यहाँ सामने थे ना तो सब ऐसे हो गए थे थोड़ा सा। हरी शास्त्र में फोटो खींचती है अपनी, उसकी खबर नहीं है। ये हर समय कर्म के द्वारा फोटो खींची जा रही है, उसकी खबर नहीं है। क्षण क्षण के परिणामों से, क्षण क्षण के भावों से जो कर्म बन रहे हैं उसकी हमारे को खबर नहीं है। ये पिक्चर बन रही है हमारी, रील बन रही है, कार्बन कॉपी तैयार हो रही है, जिसे कार्बन शरीर कहते हैं। ये कार्बन कॉपी है तो तैयार रहे आप जो फोटो खींच रही है उसके लिए। तो कैसे तैयार होना है? परिणामों की निर्मलता से, भावों की विशुद्धि से, भाव विशुद्धि पूर्वक हमने ये सारी यहाँ पूजन की है और बहुत भाव पूर्वक हम यहाँ अर्घ भी समर्पित कर चुके हैं। बोलना है अंतिम? हाँ अंतिम देखो आप। ओम ह्रीम सी जिनमुखोद्भूत, ओम ह्रीम सी जिनमुखोद्भूत द्वादशांग विस्तृत ज्ञान आये अनर्घ पद प्राप्त ये जय माला पूर्णार्घम निर्वपाणी की स्वाहा। श्रुतते मन मय अर्घ्य भविजन को सुखकार जिन आगम अभ्यास ही पद अनर्घ दाता। क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, वापस बोलो। जिन आगम अभ्यास ही, क्या है? जिन आगम का अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ये पूजा भी इसलिए है कि पूजा के माध्यम से ही सही, कोई बात तो नहीं तो कुछ तो इस बात दिमाग में जाएगी, इसलिए पूजा है। जिन आगम का अभ्यास पद अनर्घ दातार, अनर्घ पद की प्राप्ति मिलेगी, प्रेसिडेंट पद की नहीं। अरे मैंने पूजा की है, अगली बार मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए पूजन की जाती है कि पुष्पांजलि। चलिए अंतिम अंतिम महार्घ शायद इसमें नहीं है पुस्तकों में, एक बार अंतिम महार्घ हम लेंगे फिर शाम की पाठ वर्ग विसर्जन करेंगे। हाँ आपके पास जो मंगल है ना, मंगल अर्चना, उसमें समय से पहुंची गाड़ी। मैं देव के हंस पूजो आचार्य के जाए पूजो साधु पूजो तो हरे हंस वासित मैं पूजो द्वादशांगणी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव वाचित धर्म कचरी दया मैं पूजो सदा यदि भावना थोड़स रतन त्रय जामिना शिव नहीं कदा त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जयो पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय कचरपुर पूजित वयो कैलाश पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी उन्हीं और तीरथ कर्मदा चौबीस दिन राज पूजो बीस क्षेत्र के नामी जलगंगा चतुर्भुज चरु दीप रूप फल लाए सर्व पूज्य पद पूजऊ गौरी भक्ति बढ़ाए गौरी भाव पूजा भाव बनना त्रिकाल पूजा त्रिकाल बनना करी भावना भाव श्री हरम जी की आचार्य की उपाध्याय जी सर्वी की पंचमी
ਰਾਜਵਾਨ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਨ ਕੇ ਬਦਨ ਕਰੀ ਚੰਦੇ ਜਾਈ ਸੋੜ ਸਾਈ ਜਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਚਨ ਦਾ ਬਰਨ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਜਲਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ੇ ਸਪਤਮੀ ਤਿਥੋ ਰਵਿਵਾਸਰੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਿਖਲਾ ਪ੍ਰਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਬ ਸਿੱਧੇ ਦੇਵਾਨ ਅਨੁਪਦ ਪ੍ਰਾਪੇ ਮਾਰਗਮ ਨਿਰਵਪਾਣੀ ਸੀ ਸਵਾਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਪੁਸਤਕੋ ਮੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਨਯਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਕਾ ਯੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਹਮ ਯੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਬੋਲੇਂਗੇ। ਸਭੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਕੇ ਲਈ।
ਪਰਦਾਯ ਅਭਿਪ੍ਰਾਯ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀ ਸਵਾਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਲ ਰਹੀ ਵਿਕਟ ਵਨ ਮੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂੰ ਵਿਜੈ ਸੁਖ ਕੀ ਚਾਰਨੇ ਨਾ ਸਾਗਰ ਦ੍ਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਦਰਾ ਆਜ ਲਖ ਕਰ ਆਪ ਕੀ ਸਹਿਜੀ ਪ੍ਰਭਿ ਲੈ ਹੂੰ ਅਬ ਵਾਸਨਾਏ ਪਾਪ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮੂ ਪਿੰਡ ਆਨ ਕੰਦ ਆਯਤ ਵਾਯ ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਵਯਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਰੂਪ ਹੂੰ ਪਰਾਇਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਦਾਨ ਹੋ ਸਦਿਆਨ ਹੋ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਹੇ ਨਾਥ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਹੀ ਚਰਨ ਪਥ ਪਰ ਬੜ ਚਲੂੰ ਆਪ ਤਮ ਨਿਜ ਰੂਪ ਲਖ ਕਰ ਆਪ ਕੀ ਬ੍ਰਤੀ ਲਾਹੂੰ ਗਿਆਨ ਵਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਗਿਆਤ ਆ ਅਗਿਆਤ ਨੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ਮਾ ਜਿਨ ਰਾਜ ਜੀ ਅਬ ਨਸ਼ੇ ਸਭ ਭਵ ਤਾਪ ਸੂਜਨ ਕਿੰਤੁ ਵਿਤਰ ਜਿਤ ਅਭੇ ਕਰੂੰ ਕਭੀ ਨ ਵਿਛੁੜੇ ਪਾਤ ਕਰੂੰ ਵਿਤਰ ਜਨ ਮੈਂ ਅਥੈ ਸ਼ਮਾ ਚਾਹਤਾ ਨਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਦਾ ਰਹੇ ਤਵੇ ਪਾਠ ਸਦਾ ਰਹੇ ਤਵੇ ਪਾਠ
ਨੌ ਵਾਰ ਓਂਕਾਰ ਮੰਤਰ
इतनी के जाप का मंत्र लिखा है, 9 बार जाप करेंगे हम लोग। जिनके पास पुष्ट है वे पुष्ट सेवन कर सकते हैं, बाकी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। ओम ह्रीम श्री संपूर्ण द्वादशांगाय नमः। 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 स्वाहा। समापना लास्ट स्टेज। शरद माता स्वर व्यंजन रेश रागि की यदि हो, शास्त्र सिंधु में कौन न उलझे, क्षमा करो पाऊं भवपूर। हे प्रभु निज संवेदन लक्षण भूषित श्रुत चक्षु द्वारा, केवल ज्ञान चक्षु से मंडित आज आत को देख रहा। शास्त्राभ्यास दिनेन्द्र वासी संगति आर्यों की रहे सदा। शास्त्र करूँ मैं दोष कथन, गति अपवर न होने जब तक भव में अर पाऊं। जिन पद में रुचि रति अन्य से, जिन गुण समन में अकी, निष्कलंक निर्दोष भावना होने मन। मंगलम भगवान जीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मो सुमंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारिकम, प्रदानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शिव आदिनाथ भगवान की, शिव महावीर भगवान की, शिव चौबीसों के शंकर भगवान की, शिव द्वादशांग वही जन्मानी माता की जय।
जी आपका बहुत बहुत आभार है, और आपने ऐसी तरह से हमें रुद्र पंचमी में पूजा करवाई, और मेरा आपको भी और अभय कुमार जैन को भी जिसने ये पूजा की है। इतना अच्छा शांति पाठ मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, इतना अच्छा पाठ देखे मेरी तरफ से भी उनका धन्यवाद मानना आपको मिले अभय कुमार जी को, और अभय कुमार जी यहाँ कई बार आ भी गए हैं, तो उनका ये मेरी तरफ से आभार। और आपने जो समझाया है तो सभी सभी सुंदर भविष्य दिया है, तो उसके लिए भी यही तरह यही तरह की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। तो हाँ तो आप जरूर से